मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 23 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत ही हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। आप सबके साथ ही दोस्तों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं कुमार अनुग्रह जुन्नार देव मध्य प्रदेश से, हिमांशु चंद्रकर आपका गांव है चीचा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, धीरज कुमार यादव आपका गांव है पलहामो खुर्द जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से, राकेश आप सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं, संगीता चौहान लखनऊ उत्तर प्रदेश से और उर्मिला सिंह आपका गांव है जहांगीरपुर जिला सेओहर बिहार से। तो कुमार अनुग्रह, हिमांशु चंद्रकर, धीरज कुमार, राकेश, संगीता और उर्मिला आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे बिटवीन द लाइंस इसके बारे में बात करूंगा। आपको मालूम है कि आज सोमवार का दिन है और सोमवार को सामान्यतया अब हम लोगों ने फैसला किया है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए, है ना, इस पर बात किया करेंगे और बाकी दिनों में न्यूज के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ न्यूज जो महत्वपूर्ण होंगी उनकी भी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन मुख्य विषय में अभी फिलहाल कुछ समय तक न्यूज को नहीं ले रहे हैं, स्पेशली ऑन मंडे। जो न्यूज है मित्रों, उसके तहत आपने सुना एक न्यूज थी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये जो नागरिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है मित्रों, इसके बारे में बहुत पहले हम लोगों ने खूब चर्चा की थी जब इसकी तैयारी हो रही थी और इस पर बहस भी हुई थी। बेसिकली असम में तैयार किया जा रहा है, बस आप प्री के हिसाब से थोड़ा सा बस जान लीजिए, असम में तैयार किया जा रहा है। असम देखिए कि हमारा बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश और उधर के काफी आपको बॉर्डर एरिया मिलेगा, तो असम में क्या हो रहा है कि विदेशी नागरिकों की घुसपैठ हो रही है। होता यह है कि फिर विदेशी नागरिक आकर के असम में बस जाते हैं, किसी तरह से फिर अपनी सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो पूरा का पूरा जो असम की जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो बुनावट है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो रहा है और इसको लेकर के असम में जो रहने वाले लोग हैं, जो वहां के मूल लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो सरकार ने बेसिकली अब एक रजिस्टर बनाना शुरू किया, या कह लीजिए एक सूची बनाना शुरू किया है, ताकि असम में जो विदेशी नागरिक आकर के रह गए हैं उनकी पहचान की जा सके। इसके लिए जो तो आज न्यूज में आपने सुना कल के कि भारत सरकार ने एश्योर किया है कि असम के नागरिकों को कि यदि वो सच्चे नागरिक हैं भारत के, असम के नागरिकों को नहीं कहना चाहिए, भारत के नागरिकों को श्योर किया है कि अगर वो है असम में लंबे समय तक रह रहे हैं, जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर पर वो खरे उतरते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह के भय आशंका की जरूरत नहीं है, वो इन तो श्योर रहे। पर्पज है कि जो घुसपैठ करके बाहर के लोग आ गए हैं उनकी पहचान की जाए और फिर उसके लिए उपयुक्त कदम उठाया जाए। दूसरी खबर आपने सुनी फ्रेंड्स, एशिया प्रशांत क्षेत्र, ये शब्द आपने सुना एशिया प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में मैंने आपसे बात की थी, मुझे ध्यान है पिछले सप्ताह हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी, आइडेंटिफाई किया था कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। एशिया प्रशांत क्षेत्र भी इनफैक्ट काफी कुछ हिंद प्रशांत क्षेत्र ही है, क्योंकि आप देखेंगे नक्शे में और आपको देखना भी चाहिए कि जो हिंद महासागर है वो ज्यादातर एशिया महाद्वीप के निचले हिस्से में ही फैला हुआ है। तो फिर जो आपके सार्क देश आपको मिलेंगे, ये सब के सब एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही देश मिलेंगे। तो एक शब्द आपको मिल गया, एशिया प्रशांत क्षेत्र। इन शब्दों का प्रयोग आंसर राइटिंग में किया जाना चाहिए, इससे एग्जामिनर को पता लगता है कि नहीं, जो स्टूडेंट है उसमें मेच्योरिटी है, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र। अब आप देखें कि न्यूज में क्या बात की गई, न्यूज में यह कहा गया कि जो भी इसको लेकर के यूएनओ का एक वो संगठन आयोग जैसा बना हुआ है जो इस क्षेत्र के कामों को देखता है, उसने ये कहा कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा कुछ उपलब्धियां हासिल कर नहीं पा रहा है, ये उसका स्टेटमेंट है। यानी कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, या यूं कह लीजिए कि ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया के देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में आ जाएंगे, राइट। तो यहां के जो देश हैं, इस क्षेत्र में जो देश हैं स्थित हैं, वो अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं। फिर उन्होंने एक वाक्य और कहा कि हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया है, यानी कि शिक्षा के प्रतिशत में तो सुधार हुआ है, लेकिन दूसरे जो इंडेक्स हैं वो उनके बेहतर नहीं हुए हैं। और उसमें फिर ये भी बात कही गई कि लेकिन भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, किया है। हरित ऊर्जा जिसे हम क्लीन एनर्जी कहते हैं, ग्रीन एनर्जी कहते हैं, तो भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उसने एक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए करने वाले राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया है। अब आप देखें कि एक सिंपल सी आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई, तो अब आपके दिमाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि अच्छा, ये जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरीके से आप कह लीजिए कि विकासशील ही है, या कुछ देश हो सकते हैं कि अविकसित भी हों, अब भारत का भी उसमें नाम है, तो अब आपके दिमाग में ये भी क्लिक होना चाहिए या रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए कि नहीं, भारत भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही है। जरूरी नहीं कि उसके लिए हिंद क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र का ही उपयोग शब्द का इस्तेमाल किया जाए, या हिंद महासागरीय क्षेत्र का ही इस्तेमाल किया जाए, राइट। ये थोड़ा सा न्यूज सुनने का एक तरीका होता है, जब आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी तो आप पाएंगे कि ये सारी चीजें आप खुद रिलेट करने लगेंगे। इसके बाद इसी के न्यूज के ठीक बाद एक और शब्द आपने सुना होगा, वह है वैश्विक विकास लक्ष्य 2030। वैश्विक विकास लक्ष्य 2030, मित्र, मुझे आश्चर्य है कि इसके बारे में अखबारों में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, जबकि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। वैश्विक विकास लक्ष्य 2030, अब बेसिकली ये है क्या? ये मूलतः जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एजेंडा है, कहा भी जाता है, इसका एक दूसरा नाम भी आपको मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030। एजेंडा 2030 कहने का साफ मतलब है कि 2030 तक के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया गया है, और इसके तहत 17 लक्ष्य रखे गए, 17 गोल्स रखे गए हैं, और इन गोल्स का भी एक नाम दिया गया है, कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में होगा सतत विकास लक्ष्य, इंग्लिश में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि SDG। तो इस तरह से इसका नाम एक और नाम हो जाता है SDG, ये भी उसका नाम होता है। देखिए, अलग अलग नाम से अखबारों में आपको पढ़ने को मिल सकता है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन न हो तो मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। एक तो हो गया संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030, दूसरा हो गया सतत विकास लक्ष्य SDG 2030, उसमें लिखा हुआ मिल सकता है। इसका जो आप कह लीजिए कि जो फॉर्मल नेम है, जो औपचारिक नाम है, वो थोड़ा सा और दूसरा है, हालांकि ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो इसका फॉर्मल नेम है मित्रों, वो है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को बदलना, दो बिंदी हैं, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका फॉर्मल नाम है। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं ताकि जब भी आपको पढ़ने को मिले तो आप समझ जाएं कि ये 2030 यूएनओ का जो एजेंडा है उससे जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं। दोस्तों, मुख्य विषय के काज मैंने रखा है बिटवीन द लाइन्स। देखिए, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के आप टॉपर भी रहे हैं, बहुत अच्छे आपने मार्क्स स्कोर किए या नहीं भी स्कोर किए, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी किए हैं तो आप ये मत समझिए कि आप बिल्कुल सिविल सर्विस के पैटर्न पर ही चल रहे हैं। उसका कारण यह है, कि जो हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो ग्रेजुएशन तक बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन सामान्यतया वो डिफरेंट है, लेकिन जो सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पैटर्न का यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी ट्विस्टिंग, पैटर्न का मतलब मेरा इससे है, ग्रेजुएशन तक, यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो उसमें होता है कि सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और स्ट्रेट क्वेश्चन के स्ट्रेट आंसर होते हैं, और वो स्ट्रेट आंसर आपको किताबों में ही मिल जाते हैं, नोट्स में मिल जाते हैं, आप पढ़ते हैं और वहां लिख करके आ जाते हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से लिख करके आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। सब सीधी सी बात है कि मार्क्स कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उन्होंने जो पूछा है आपने अगर ये वही बताया है तो मार्क्स क्यों नहीं मिलने चाहिए। तो होता यह है कि फिर हमें लगता है कि नहीं, हम इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और नो डाउट कि आपने प्रूफ कर दिया है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन जो हमारी जो उच्च शिक्षा है, जिसके बारे में अभी आप ढेर सारी चीजें पढ़ भी रहे होंगे, है ना, उच्च शिक्षा को लेकर के देखिए कि कितना कितनी बहस चल रही है कि हम 100, हमारी कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पर है वहां किस तरह की शिक्षा हो रही है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है। वो जो पढ़ाई हो रही है बेसिकली वो बिटवीन द लाइन्स की पढ़ाई है। बिटवीन द लाइन्स का मतलब है मित्रों की लिखा हुआ तो है, आप किताब उठा करके देखिए, कॉपी उठा करके देखिए, कोई भी छपी हुई चीज को उठा करके देखिए, तो एक लाइन है और इसके बाद उसके नीचे लाइन है, उसके बीच का हिस्सा थोड़ा सा सादा है, छूटा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, खाली हिस्सा है, वहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सवाल यह है कि जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहां क्या लिखा हुआ है, क्या सच में वो खाली है? सच पूछिए तो जो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, वो वहीं लिखी हुई है, वो एक स्पेस है। किसके लिए वो स्पेस है? पेजेस के लिए स्पेस नहीं है, लिखने वाले की सुविधा के लिए वो स्पेस नहीं है, वो तो है ही, उसके बिना तो सब घिचपिच हो जाएगा। वो स्पेस बेसिकली आपके लिए है, वह स्पेस आपके दिमाग के लिए है, वो हम लोगों के लिए होता है कि जहां नहीं लिखा गया है, यानी कि वहां आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कीजिए, आप सोचिए कि ये कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है। यहीं पर आपके चिंतन और मनन की बात आती है। देखिए भारत में तीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपने ये पढ़ा भी होगा, अध्ययन, चिंतन, मनन। अध्ययन, मनन और चिंतन, ये थोड़ा सा कभी कभी मनन चिंतन को आपको आगे पीछे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि आप अध्ययन तो कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन तक की हमारी जो ज्यादातर पढ़ाई है वो अध्ययन तक सीमित है, फिर हम मनन और चिंतन पे नहीं जाते। चिंतन हम दिमाग से करते हैं और मनन हम मन से करते हैं। जब मन की गहराई में वो चीज उतर जाती है तो उस चीज की जो वैल्यू है, जो उसका स्वरूप है, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अरे इसके कहने का मतलब यह था। और जब आपको यह बात पकड़ में आने लगती, यानी कि बिटवीन द लाइन्स में चीजें दिखाई देने लगती हैं, आपके दिमाग में क्लिक होने लगते हैं, थॉट्स आने लगते हैं, तब आप मान करके चलिए कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सिविल सर्विस की जरूरत है। मित्रों उदाहरण के तौर पर मैं आज आपको एक क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनसत्ता का एडिटोरियल कमेंट है। देखिए उसमें एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, एकदम मैंने जानबूझ करके एकदम सरल सी लाइन को चुना है। वो कह रहे हैं कि बढ़ता भ्रष्टाचार व्यवस्था पर से आम जन के विश्वास को भी कम करता है। सिंपल सी लाइन है, बढ़ता भ्रष्टाचार व्यवस्था पर से आम जन के विश्वास को भी कम करता है। इसके बाद इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसके बाद आगे की वो अपनी बात कह रहे हैं। आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया और सही समझ में आया है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को उठा करके आपको प्रश्न के रूप में दे दूं और मैं कहूं कि एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए या इसकी पुष्टि कीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं, आप इसका मूल्यांकन कीजिए, बस दैट्स ऑल। अब आप करके देखिए यदि आपके दिमाग में थॉट्स फटाफट आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम का क्रंच तो है, समय की सीमा है, समय के दबाव में आप काम करते हैं, तो यदि आपके पास आपके दिमाग में फटाफट थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि आप एक ही थॉट्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं और पता लगा कि इसी वाक्य को दोहरा रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार के कारण फिर आमजन को विश्वास नहीं होता है, उन्हें सब अविश्वास होने लगता है, वो न तो अफसरों पर विश्वास करते हैं न व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि उनका काम तब तक नहीं होगा जब तक कि वो किसी को घूस नहीं देंगे, इससे उनमें निराशा का भाव पैदा हो जाता है, इससे अपराध पैदा होने लगते हैं आगे चल करके। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं कहा है, आपको बताना है, इसको प्रूफ करना है। यही है मित्रों बिटवीन द लाइन्स, और मेरी समझ से आपको कुछ न कुछ तो जरूर इस बात की झलक मिली होगी कि बिटवीन द लाइन्स होता क्या है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से तीन मित्रों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और वह हैं हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, प्रशांत सिंह नासिक महाराष्ट्र से, और आशुतोष और अय्या उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।